हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चंद्रिका और वीरेश बिना एक दूसरे से कोई भी बात किए चुपचाप वहां से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का माहौल ही काफी अजीब है। दोनों ही जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर लड़ पड़ते हैं, और जिसकी वजह है उन दोनों को ही वसुंधरा की फिक्र है, और जल्दी से जल्दी वो दोनों ही वसुंधरा को ढूंढकर वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अभी तो वो दोनों उसे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और चंद्रिका को ऐसा लग रहा है जैसे कि वीरेश शायद उसकी मदद करने का बस नाटक कर रहा है, और असल में उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों वहां से थोड़ा आगे आए और तभी चंद्रिका को एकदम से समर का ध्यान आया, तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा और वहां आसपास दूर तक कहीं भी उसे समर नहीं नजर आया, तो ठिठक कर वो वहां पर ही रुक गई। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार को वहां अपने आसपास और अपने पीछे ना आता हुआ देखकर चंद्रिका के मुंह से एकदम ही निकला, तो उसकी आवाज सुनकर वीरेश भी आगे नहीं बढ़ पाया और वहां पर ही रुक गया। पीछे मुड़कर चंद्रिका की बात का जवाब देते हुए वीरेश ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमार यहां पर नहीं है तो कहां गए? वो हमारे साथ ही तो थे ना। इतना बोलते हुए वीरेश ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर उसे सिर्फ चंद्रिका ही नजर आई और कोई भी नहीं। मुझे क्या पता कहां पर गए, पता होता तो तुमसे क्यों पूछती? चंद्रिका उसी तरह परेशान होते हुए बोली। वीरेश ने बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहा, राजकुमार को इस तरह हमें बिना बताए यहां से कहीं नहीं जाना चाहिए। आप बताओ, हम दोनों पहले उन्हें ढूंढे या फिर राजकुमारी वसुंधरा को? नहीं, जहां तक मुझे पता है राजकुमार इस तरह अकेले यहां पर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें तो कोई रास्ता भी नहीं पता है। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में है, या फिर रास्ते में कहीं उन्हें कोई चोट या जंगली जानवर। नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। इतना बोलते हुए चंद्रिका ने अपने दिमाग से तुरंत ही ये ख्याल झटका और दाएं बाएं अपना सिर हिलाया। वीरेश भी अब तक जाकर उसके एकदम सामने ही खड़ा हो गया है और उसे इस तरह से करते हुए बोला, क्या पागलों की तरह अकेले ही अपना सिर हिला रही हो? ये बताओ, राजकुमार को आखिरी बार कहां पर देखा था तुमने? जब हम दोनों वहां पर गुफा में थे तब तो वो हमारे साथ ही थे ना। वीरेश के इस सवाल पर चंद्रिका ने हां में अपना सिर हिलाया और उसकी बात पर सहमति जताई। तभी उसे एकदम से कुछ याद आया और वीरेश का भी दिमाग ठंडा, तो उन दोनों ने एक साथ बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर वीरेश चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई है और उसने कहा, इसका मतलब हमें फिर से वहां पर ही जाना होगा। चंद्रिका से सवाल करते हुए वीरेश ने ये बात कही तो चंद्रिका तुरंत ही बोली, हाँ बिल्कुल, हम राजकुमार को इस तरह से वहां पर अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे भी वो शैतानी गुफा है, तुमने ही ये बात बोली थी, तो वहां पर राजकुमार को बहुत सारे अनजान खतरे हो सकते हैं। जल्दी से वापस चलो, अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं वहां से। इतना बोलते हुए चंद्रिका वीरेश से पहले ही वापस उसी रास्ते की तरफ मुड़ गई जहां से वो लोग अभी आए थे। चंद्रिका को इस तरह भागते हुए वापस उस गुफा की तरफ जाते हुए देखा, वीरेश के पास भी और कोई चारा नहीं बचा उसके बाद उसके पीछे वहां पर जाकर राजकुमार को ढूंढने के अलावा। 5-5-5। जंगल के किनारे पहाड़ी के बीच बना हुआ वो खंडहर नुमा बड़ा सा घर, जहां पर उसके चारों तरफ आग की लपटें बहुत ही ऊंची उठ रही है, जो कि उसे 3 मंजिला घर से भी ऊंची जा रही है, और वो आज इतनी ज्यादा भयानक है कि उसके आसपास के सारे पेड़ पौधे भी उस आग की चपेट में आ गए हैं, और एक काला धुआं वहां उसे पूरे इलाके में फैला हुआ है, जिससे कि नीला आसमान भी उसे काले धुएं की एक परत से ढककर काला हो गया है। लेकिन विक्रांत पर वो आग बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, क्योंकि उसने ही वो आग लगाई है, और आग के बीच में से निकलता हुआ वो उस खंडहर नुमा घर के अंदर आया। विक्रांत एकदम लगभग भागते हुए उस घर के अंदर आया, क्योंकि उसे घर के अंदर ही उसने वसुंधरा को वहां पर रखा हुआ है। वो भले ही उसकी कैद में और उसके बनाए हुए कवच के अंदर है, लेकिन फिर भी दैत्यराज वहां पर आ चुका है और विक्रांत ने अपनी आंखों से उसे अंदर आते हुए देखा है। दैत्यराज, बाहर निकलकर मेरे सामने आओ और अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम मेरे सामने कभी जीत नहीं सकते। कोई नहीं जीत सकता विक्रांत से, विक्रांत ने बहुत ही तेज आवाज में ललकारते हुए उसे कहा। विक्रांत की इस बात पर दैत्यराज ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बहुत ही भयानक हंसी वहां पर गूंजी, और वो किसी चुड़ैल की हंसी लग रही है, क्योंकि तभी एक चुड़ैल जो कुछ देर पहले विक्रांत को वहां उसे जगह के बाहर हवा में तैरती हुई नजर आई थी, अभी भी वो दांत निकालकर हंसते हुए वहां पर नजर आई। उसे चुड़ैल के इस तरह से हंसने पर विक्रांत को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक बार उसे चुड़ैल पर किया, जिससे कि उसका आधा हिस्सा जलकर काला हो गया और वो और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। मलिक, बचाइए मुझे, बचाइए मुझे इस शैतान के हमले से, मैं ये सहन नहीं कर सकती, उस चुड़ैल ने मदद के लिए आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया।
वो दर्द से कराहती हुई वहां सामने जमीन पर गिरी पड़ी है और विक्रांत के हमले की वजह से उसके शरीर का आधा हिस्सा जो जलकर काला हुआ है उस पर उसे बहुत ही तेज जलन महसूस हो रही है, लेकिन वो दर्द में तड़पने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी विक्रांत चलते हुए आगे आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे चुड़ैल के चेहरे पर डर एकदम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि विक्रांत के एक ही बार में उसकी जो हालत हुई है उसके बाद उसे पता है कि विक्रांत उसे एक झटके में मार सकता है। इसलिए वो घबराई हुई तुरंत ही विक्रांत के पैर पकड़कर बोली, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बस दैत्यराज के कहने पर ही उसका साथ दे रही हूँ, क्योंकि उसने सारी चुड़ैलों को कैद कर लिया है, इसलिए ही मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे छोड़ दो। विक्रांत ने तुरंत ही उसके हाथों को अपने पैरों पर से झटक दिया और बहुत ही हिकारत भरी वज़रों से उसे चुड़ैल की तरफ देखते हुए बोला, तुम चुड़ैलों का वैसे भी कोई ईमान नहीं होता, कम से कम जिसके साथ मिलकर यहाँ पर मुझ पर हमला करने आई हो तो उसका साथ ही दे लेती, लेकिन तुमने तो बस एक झटके में ही पाला बदल लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बस मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, उसे चुड़ैल ने फिर से इस तरह गिरते हुए कहा। तो विक्रांत ने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो विक्रांत की आंखों से एक नारंगी रोशनी निकाली और उसके शरीर पर लगी, जिससे कि उसकी हालत सुधरने लगी। लेकिन इसी बीच विक्रांत को अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसने जैसे ही अपना हाथ गर्दन पर लगाया तो उसे पता चला किसी ने उसकी गर्दन पर वार किया है, जिससे कि वहां पर कट गया है और खून निकल रहा है। विक्रांत का ध्यान जमीन पर पड़ी हुई उसे चुड़ैल की तरफ से बिल्कुल है गया और वो तुरंत ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि हवा में तैरते हुए तीन प्रेत अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन विक्रांत को उनके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। उसे एहसास तो हो चुका था कि यहाँ पर काफी सारी शैतानी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे इन सबसे कोई भी खतरा नहीं रहता, ना ही वो इन सब चीजों से डरता है, क्योंकि वो खुद को इन सारी शैतानी शक्तियों से कहीं ऊपर मानता है, क्योंकि वो खुद शैतान का अंश है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने विक्रांत पर हमला किया। इतना बोलते हुए विक्रांत ने अपने दोनों बाजुओं को हवा में फैलाया और गुस्से भरी आंखों से उन सब की तरफ घूर कर देखा। तभी विक्रांत के हाथ और आंखों से कुछ शक्तियां और निकालकर उन सब की तरफ बढ़ी और वो तीनों एक साथ ही उन शक्तियों में बंद हो गए। उन तीनों प्रेतों को शक्तियों में बांधकर विक्रांत ने जमीन पर पटक दिया और उन दोनों को ही करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कान में एक तेज चीख पड़ी जो कि वसुंधरा के सीखने की आवाज थी और वो दाएं तरफ से आ रही थी जहां पर वसुंधरा का कमरा था। नहीं, वो दैत्यराज राजकुमारी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये राजकुमारी के आवाज को जरूर राजकुमारी तक पहुंच गया है। नहीं, मुझे पहले वहां पर ही जाकर देखना होगा। अपने आप से बात करता हुआ विक्रांत तुरंत ही ऊपर हवा में उठ गया और दाएं तरफ वाले उसे कमरे की तरफ बढ़ गया जो कि पहली मंजिल पर था और तुरंत ही उसे कमरे के दरवाजे तक पलक झपकते ही पहुंच गया। क्योंकि वो घर पुराना खंडहर नुमा है तो वहां पर कोई भी दरवाजा खिड़की सही सलामत नहीं है। जितने भी कमरे हैं वो बस दीवारें ही बचे हैं, वो फिर उनमें से कुछ टूटी फूटी, इसलिए जिस कमरे में उसने वसुंधरा को रखा था वहां पर भी कोई दरवाजा नहीं। उसने अपने काले जादू से ही वहां पर एक ऐसे ही दिखने वाला दरवाजा बनाकर रखा था जिसे कि वसुंधरा या कोई इंसान तो पार नहीं कर सकता, लेकिन दैत्यराज उसे दरवाजे को तोड़कर पार कर गया था। विक्रांत तुरंत ही उसे कमरे के अंदर आया और वो जैसे ही वहां पर आया उसने अपने सामने का नजारा देखा तो आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई, क्योंकि वहीं काले लबादे जैसे वस्त्र पहने हुए दैत्यराज की पीठ फिर से विक्रांत को नजर आए और उसने वसुंधरा की कलाई एकदम ही कसकर पकड़ी हुई थी और उसे लगभग अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वसुंधरा ने पीछे की दीवार को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। दैत्यराज, मेरे रास्ते से हट जाओ और हाथ छोड़ दो राजकुमारी का, नहीं तो मैं तुम्हारा ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हें पता है ऐसा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। विक्रांत ने बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देते हुए कहा। तभी दैत्यराज ने तुरंत ही पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और जैसे ही विक्रांत की आवाज उसके कानों में पड़ी उसकी पकड़ भी राजकुमारी वसुंधरा के हाथ पर एकदम ढीली हो गई थी और उसकी पकड़ ढीली होते वसुंधरा ने तुरंत झटकर अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से पीछे हटते हुए एकदम कोने में जाकर खड़ी हो गई। तुम प्रेत कुछ और चुड़ैलों से बचकर यहां पर कैसे आ गए? क्या उन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? सब के सब बेकार हैं। गुस्से में दांत पीसकर इतना बोलते हुए दैत्यराज ने विक्रांत पर हमला किया और विक्रांत उसे हमले के लिए पहले ही तैयार था, इसलिए उसने अपना हाथ आगे करके उसे हमले को खुद तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया।
दैत्यराज के सिर पर सींगे थी और उसकी आंखें पूरी काली थी। उसका पूरा चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी नजर आ रहा है उसे ही समझ में आ रहा है कि वो देखने में कितना भयानक होगा। क्या चंद्रिका और वीरेश ढूंढ पाएंगे राजकुमार समर को और बचा पाएंगे उसे? उसके बाद क्या वो तीनों मिलकर पहुंच पाएंगे वसुंधरा तक? और क्या असर होगा दैत्यराज और विक्रांत के बीच के इस लड़ाई का? और दैत्यराज आखिर क्यों पाना चाहता है वसुंधरा को? ऐसा क्या है वसुंधरा में?